ओम शांति और नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। मिसिंग डायमेंशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक बहुत अच्छी बात के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। अप्रैल 15, 1912, इन द आइसी कोल्ड वाटर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, अ ब्रिटिश ओशन लाइनर वॉज ऑन इट्स मेडन वॉयज। इट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन सिंकेबल शिप। What was the name of the ship? Titanic. The engineers who had developed that ship, they theorized that Titanic would never met with an accident because of its double hull construction. Agar Titanic kisi iceberg ke saath hit bhi karta hai, even if it pierces the outer hull, the inner hull would remain intact. The owners of the ship were so confident of the state of the art technology that they did not prepare themselves for the inevitable. And this is what precisely happened on that fateful night of April 15th, 1912, where a huge iceberg hit the Titanic, which pierced not only the outer hull, but the inner hull also. Friends, of the more than 1,500 men, women and children who perished in that accident, in that disaster, can you guess how many of them actually died because of the iceberg piercing the Titanic? The answer is very few. Majority of them died because Titanic did not have enough provisions for the lifeboats. Titanic mein lifeboat ka provision hi nahi tha. Friends, can we learn something from history? And the history teaches us, the will to win is important. The will to win is important, but the will to win is not worth a penny if we don't have the will to prepare ourselves. अर्थात कोई भी डिजास्टर आता है उसके पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ डिजास्टर इज मैलेवोलेंट मूवमेंट ऑफ अ स्टार। और डिजास्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और दूसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले यह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये डिजास्टर्स होते क्यों हैं। व्हाई डज सो मेनी डिजास्टर्स हैपन इन दिस सोसाइटी एज वेल एज इन द नेचर? उसका एक जो मिसिंग डायमेंशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो आपके सामने रखना चाहती है। कहा जाता है, यू नो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, नंबर टू इन रियालिटी। इस संसार में जो भी घटना घटती है वो दो बार होता है, पहली बार व्यक्ति के मन में और दूसरी बार रियलिटी में, राइट? बहुत बड़ा भूकंप आता है तो हम अक्सर करके डिस्कस करते हैं कि धरती माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है, लेकिन आए दिन हमारे मन में जो गुस्सा आता है उसके बारे में कभी हमने सोचा है? इसलिए कहते हैं, आउटसाइड रिफ्लेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर इनसाइड। जो भी हम बाहर देख रहे हैं, it is actually a reflection of what is happening in the mind. Therefore, in English, there is a very beautiful proverb. Kehte hain, wars are born in the minds of men. Therefore, it is in the minds of men the defense of peace should be created. Jo yuddh hota hai na, sabse pehle vyakti ke man mein start hota hai. Isliye agar hame shanti ko lekar aana hai, to wo bhi shuruaat man se hi hona chahiye. इसे डिजास्टर्स को अगर हमें मैनेज करना है तो वी हैव टू स्टार्ट ट्रैवलिंग इनवर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, है ना, टू डेवलप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड रिकवरी ऑफ अ डिजास्टर। नाउ देयर आर फोर स्टेप्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। लेट अस एनालाइज दिस फोर स्टेप्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर स्ट्रैटेजीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज मिटिगेशन, नंबर टू इज प्रिपरेशन, थर्ड स्ट्रैटेजी इज रिस्पॉन्स एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी इज रिकवरी, राइट? सो फ्रेंड्स, लेट अस एनालाइज द फोर स्ट्रैटेजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड द फोर स्ट्रैटेजीज आर मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। एक एक को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मिटिगेशन। नाउ व्हाट डज मिटिगेशन मीन? मिटिगेशन मीन्स इट लुक्स एट प्रिवेंशन थ्रू प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। It determines the likelihood of a disaster and takes measures to minimize probable and possible damage. अर्थात the strategy of mitigation means सबसे पहले हम ये देखें कि उस disaster को कैसे हम prevent कर सकते हैं और कौन कौन से हम measures लें ताकि disaster बिल्कुल हो ना सके, right? इसके लिए government and the state agencies काफ़ी steps तो लेती रहती है, लेकिन हम जो आपको बताते हैं कि disasters को अगर हमें prevent करना है तो we should live in harmony with nature. प्रकृति के साथ सद्भावना के साथ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है. जब हम कहते हैं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, सद्भावना के साथ रहना, मतलब क्या है? एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. कहते हैं द फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर. कौन कौन सा है फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर? नंबर वन इज अर्थ, पृथ्वी. नंबर टू इज फायर, अग्नि. नंबर थ्री इज वॉटर, दैट इज पानी. नंबर फोर्थ इज एयर, हवा. नंबर फिफ्थ इज स्काई, और वो है आसमान या आकाश. जब हम कहते हैं प्रकृति के साथ सद्भावना के साथ रहना, मतलब ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, इसमें कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई विशेषता है. वो गुण और विशेषता को हमें अपने जीवन में धारण करना है. जो द फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर है उसमें पहला है द अर्थ, पृथ्वी. और पृथ्वी को एक बहुत सुंदर एक टाइटल देते हैं और वो कहते हैं दाता है ना. क्योंकि पृथ्वी में अगर हम एक बीज भी बोते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, हमें हजारों फल रिटर्न में देते हैं. इसे अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर, राइट? और हमेशा पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ जो होती है हमेशा अपने बच्चों के प्रति, है ना, वो स्नेह, वो प्रेम, वो केयर अपने बच्चों को देती है. और वही गुण हमें अपने में भी लेकर आना है. माँ की एक और विशेषता होती है और वो है निस्वार्थ स्नेह, अनकंडीशनल लव. उसी तरह हमारे में भी वो नेचर आना चाहिए और वो है दैट शुड बी एन अनकंडीशनल लव टू एवरीवन. फायर की विशेषता क्या होती है, अग्नि की विशेषता? इट हैज गॉट अ पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मींस परिवर्तन. अगर आप लोहे को डालोगे तो उसको परिवर्तन करके एकदम सॉफ्ट कर देगी. अगर आपने मिट्टी को डाला तो उसको कड़क बनाकर दे देती है, राइट? तो उसी तरह वही क्वालिटी अगर हमें अपने जीवन में धारण करना है तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स. ट्रांसफॉर्म फॉर समथिंग गुड इन लाइफ, करेक्ट? कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में कर सकते हैं? तो अपने आप को देखना है कि अगर हमारे में कोई कमी और कमजोरी है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना है, करेक्ट? और एक बहुत सिंपल तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज अवर लैंग्वेज, हमारी भाषा. जब भी हम किसी से बोलते हैं तो हमारी भाषा कैसी होती है? सो अवर लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी स्वीट. हमारी जो भाषा है ना, बहुत बहुत मधुर होनी चाहिए. ऐसे आज से आप इस बात को ध्यान रखना है, जब भी हम किसी से मिलें तो हमारी भाषा जो होना चाहिए वो बहुत मधुर और स्वीट होना चाहिए. दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एक्सपेक्टेड. अच्छा, तीसरा जो है वो है वाटर. पानी की विशेषता क्या होती है बताइए? वाटर इज ऑलवेज कूल, हमेशा ठंडा होता है. इसलिए जब हमको प्यास लगती है ना, और जब बहुत प्यास लग रही है, अगर हमारे सामने 36 प्रकार का भोजन रखेंगे तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? क्योंकि जैसे ही वो हम पानी पीते हैं, इट गिव्स अस लॉट ऑफ कूलनेस. और वही गुण हमें अपने में धारण करना है, एंड दैट इज We should always remain cool, calm. हमेशा हमारे दिमाग को हमें ठंडा रखना है. काफी बार हमको बहुत बहुत गुस्सा आने लगता है, राइट? है ना, पानी को भी एक काम करो, पानी को एक बीकर में रखो एंड पुट इट अक्रॉस अ फ्लेम, तो क्या होगा, है ना, गर्म होने लगेगा. लेकिन कुछ समय के बाद आप पानी को बाहर लेकर रखो तो अगेन वो ठंडा हो जाता है. तो उसी तरह हमें भी पानी की तरह हमेशा अपने मन को हमेशा कूल काम रखना है. भले कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्यों ना आए जो हमको कितनी गर्म करने की कोशिश करे, बट इवन देन वी ऑट टू रिमेन ऑलवेज कूल. जैसे आप देखते हैं बाहर बहुत गर्मी होती है, लेकिन आप जब घर के अंदर आते हैं तो आप क्या करते हैं कि स्विच ऑन अ फैन और एन एयर कंडीशनर. उसी तरह जब भी हमें कोई विपरीत परिस्थिति जो हमें गर्म करने की कोशिश करे, तो उस समय वी शुड स्विच ऑन एन इंटरनल एसी. और कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना है, and that is how we imbibe the quality of water. Acha, what is the fourth one? Aur wo hai hawa. Aur air ya hawa jo hame ek bahut sundar message deti hai, and that is always relax and happy. Correct? Hawa kya hota hai? Bahut light hota hai. Aur hawa jab thandi thandi hawa aati hai, we become very relaxed, we become very very happy. Usi tarah हमें भी बहुत लाइट रहना है, हमेशा रिलैक्स, हमेशा एज फार एज पॉसिबल बी वेरी हैप्पी. कैसे पता चलता है एक व्यक्ति रिलैक्स्ड है, हैप्पी है, कैसे पता चलता है? हाउ डू वी कम टू नो? या फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. आपका चेहरा जो है मन का दर्पण है. सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग. जब भी आप किसी से मिले तो मुस्कुराते हुए मिले. करेक्ट? एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहेंगे सर आजकल के जमाने में हम कैसे मुस्कुराएं, इतना स्ट्रेस होता है, इतना टेंशन होता है, तो हाउ डू आई स्माइल? इसलिए आजकल बहुत सारे लोग दे गो एंड जॉइन लाफ्टर क्लब्स और वहां जाकर बहुत हंसते हैं, है ना? क्योंकि ऑफिस में तो हंसना पॉसिबल ही नहीं है, घर में तो मार्जिन ही नहीं है, है ना? इसलिए जाकर गार्डन्स में जाकर पार्क में जाकर बहुत हंसते हैं. यस, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स. लेकिन हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है. आई विल टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल एनेक्डोट, है ना, टू मेक यू स्माइल. क्योंकि जब आप बहुत हंसते हो, है ना, डॉक्टर्स कहते हैं जो लोग बहुत हंसते हैं, जो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, है ना, स्माइल करते हैं, हैप्पी रहते हैं, दे विल नेवर सफर हार्ट अटैक्स. और आज समाज में एक बहुत बड़ी डिजास्टर कि हम एक पहुंच चुके हैं, एंड दैट इज द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम कभी रिलैक्स रहना सीखे ही नहीं है, जिसके कारण हार्ट अटैक के बहुत बड़ा डिजास्टर के टाइम बॉम्ब पर हम बैठे हैं. लेकिन जितना हम एयर की तरह रिलैक्स्ड, हैप्पी, स्माइलिंग, खुशी में रहते हैं, ऑटोमेटिकली इट टेक्स केयर ऑफ अ हार्ट. एंड द लास्ट वन इज स्काई, आकाश. व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट एक्चुअली सिग्निफाइज अ वेरी वंडरफुल पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन. करेक्ट? स्काई इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आप में से कितनों ने नॉर्मन कजिन्स का नाम सुना होगा? नॉर्मन कजिन्स, है ना, द एडिटर फॉर सैटरडे रिव्यू फॉर मेनी मेनी इयर्स, वाज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ डीजनरेटिव टिश्यू डिजीज. डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल बच नहीं सकते हो. तो नॉर्मन कजिन्स ने कहा, अगर मुझे मरना ही है, व्हाई कांट आई, है ना, डाई विथ टोटल हैप्पीनेस एंड जॉय. और ये पॉजिटिव थिंकिंग के कारण उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल से चेकआउट किए, सीधे घर में गए, और एवरी डे ही वॉच्ड कॉमेडीज लाइक टॉम एंड जेरी, चार्ली चैपलिन एंड लॉरेल हार्डी. हंसते रहे एंड स्लोली ही रिटर्न टू फुल टाइम वर्क. फिर से उनकी सारी जो डिजीजेस थे वो पूरी तरह खत्म हो गए. इसे नॉर्मन कजिन्स ने दो किताबें लिखी है, वो है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस एंड द हीलिंग हार्ट, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग कपल विथ रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, खुशी के द्वारा हम ये सारे डिजीजेस से वापस आ सकते हैं. एक और बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम है लुइस एल हे, सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कैंसर. जब डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते हो, तो लुइस एल हे ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप बताइए कि मैं कितना समय जी सकती हूँ? तो डॉक्टर्स ने कहा, नॉट मोर देन 6 months. तो लुइस एल हे ने कहा, डॉक्टर आप कहते हो कि मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती हूँ, लेकिन क्या आपको गारंटी है कल का सूर्योदय आप देख पाएंगे? ना, देयर इज नो गारंटी एट ऑल. और लुइस एल हे ने अपने मन को बहुत वंडरफुल पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दिया, एंड स्लोली शी वॉज एबल टू कम आउट फ्रॉम दिस डिजीजेस ऑफ कैंसर. तो अगर हमारे में वो सकारात्मक एटीट्यूड होगा, तो ऑटोमेटिकली हम ये सारे रोगों से भी हम बच सकते हैं. तो वी हैव टू लिव इन हार्मनी विथ नेचर, अर्थात जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, इट इज ये अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई में जो भी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमें अपने लाइफ में जरूर धारण करना है. ओके फ्रेंड्स, द सेकेंड स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज प्रिपरेशन. नाउ व्हाट इज प्रिपरेशन मींस? इट लुक्स एट रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी, कम्युनिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. अर्थात हमें लोगों को वो कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट? आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब सुनामी आया था, तो एक न्यूज़पेपर में एक बहुत सुंदर आर्टिकल था जिसमें एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जो सुनामी इफेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए सारी दुनिया बहुत सारे रिसोर्सेज भेज रहे हैं. लेकिन उस रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वहां पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है, एंड दैट इज the requirement for counselors who can counsel people. Because the greatest fear is the fear of death. And we have to teach people, we have to create an awareness as to how to come out from this fear of death. हमें याद है बॉम्बे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम लेक्चर लिए, लेक्चर लेने के बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उन्होंने कहा, सर कैन यू प्लीज़ गिव मी योर 5 मिनट्स. मैंने कहा ओके गो अहेड. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया. उन्होंने कहा, सर जब ये सुनामी का प्रॉब्लम आया था तो मैं एज हेल्पर सोशल सर्विस के तरह मैं वहाँ पर गया और मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम दिया कि जो सारे डेड बॉडीज थे उसमें केरोसिन डालकर जलाना. बोला, सर मैंने 2 हफ्ते वो काम किया और 2 हफ्ते के बाद जब मैं वापस मुंबई आया, आने के बाद और 2 हफ्ते हो गए, सर मुझे आजकल रात को नींद नहीं आती है. दैट इज अ सीन वॉज सो ट्रोमैटिक कि इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर दैट बॉय टू कम आउट फ्रॉम दैट इमेजेस. जब रिसेंटली जब मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 1 हफ्ते के बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइन था कि द नंबर ऑफ पीपल who are using the local trains have reduced drastically because that's a fear of death. Is a preparation hame kis level par karna chahiye, and that is we have to teach people how to come out from the fear of death. Ek bar main isi tarah workshop kar raha tha, maine kaha the greatest fear is the fear of death, lekin ek bhai sahab khade hokar kehte hain, no professor I don't fear any death, mujhe mrityu ka bhay bilkul nahi hai. Maine kaha aap jo keh rahe ho na ekdam right keh rahe ho, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने क्लोज्ड वंस का मृत्यु का भय होता है ना. हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स, क्लोज्ड वंस का फियर ऑफ डेथ इज टेरिफिक. सो हाउ डू वी कम आउट फ्रॉम दिस फियर ऑफ डेथ? और उसके लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है. अराउंड 3 years back माई ओन मम्मा वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और डॉक्टर्स ने कहा था शी कैनॉट लिव एनी लॉन्ग बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. और मुझे ये बात का महसूस था हुई कि मम्मी हैज़ टू बी टॉट, शी हैज़ टू बी टॉट हाउ टू कम आउट फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. और धीरे धीरे हम उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान देने लगे विच इज़ टॉट इन द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय. और यहाँ पर सबसे पहले दिन के लेक्चर में हमको ये पता चलता है, जहाँ पर हम स्वयं को महसूस करते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं, हमें ये पता चलता है, ये ज्ञान मिलता है कि हमें शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता है जिसको हम कहते हैं आत्मा कहो, रूह कहो या सोल कहो, विच रिसाइड्स इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. और जैसे ही हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, अजय अमर अविनाशी, स्लोली वी स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. फिजिक्स में हमने पढ़ा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन प्लस बीइंग, ये 2 शब्द से बना है. ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात इसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति. तो जैसे जैसे हमको ये पता चलता है, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह मृत्यु इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल ट्रांजिशन. एम आई प्रिपेरिंग माई सेल्फ फॉर दैट? और ये तभी हो सकता है वेन वी आर इन द स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस. मैं आत्मा रूपी ड्राइवर, इस शरीर रूपी गाड़ी को मैं चला रहा हूं, और ये कॉन्शियसनेस में रहना बहुत बहुत जरूरी है. सो व्हाट हैपेंस इन टाइम्स ऑफ एनी डिजास्टर्स, ऑटोमेटिकली आई एम एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट फियर ऑफ डेथ. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन. नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट एक्चुअली फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द डिजास्टर. जब एक डिजास्टर होता है तो लोगों का बिहेवियर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, इस पर ये स्टडी जो है, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू एनी डिजास्टर. कुछ वर्ष पूर्व मुंबई में बहुत बड़ा फ्लड आया. विद इन 4 मिनट्स टू 5 मिनट्स द एंटायर मुंबई वॉज इन वॉटर्स, है ना. तो इतनी ट्रैफिक जाम हो गई थी कि घंटे तक एक के पीछे गाड़ी खड़ी थी, है ना. जब शाम का वक्त हुआ, रात का वक्त हुआ, तो लोग इतने स्टैंडर्ड थे, द होल ट्रैफिक वॉज इन टोटल जैम. तो ऐसा देखा गया कि जो लोग जो बिल्डिंग्स में रहते थे, उन्होंने नीचे आकर बहुत लोगों को हेल्प किए हुए स्टैंडर्ड इन द ट्रैफिक. उनको अपने घर से चाय, बिस्किट्स, पूरी, सब्जी, रोटी बनाकर दिए. तो दूसरा दिन न्यूज़पेपर में एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया कि अचानक वाई सो मच ऑफ अ सिविक कॉन्शियसनेस. आजकल तो लोगों के लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इन टाइम्स ऑफ अ डिजास्टर अचानक ये सिविक कॉन्शियसनेस कहाँ से जागरण हो गई? तो उसमें एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा वन ऑफ द रीजन कुड बी 4 या 5 मिनट की जो पानी थी इतनी टेरिफिक थी कि सारा मुंबई जाम हो गया था। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ है ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका मर्सिडीज बेंज भी पानी में था और साधारण सा व्यक्ति का साइकिल भी पानी में हो गया था। मीन्स एवरीबडी वेयर ऑन द सेम लेवल फाइटिंग अगेंस्ट अ नेचुरल कॉज। मतलब फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस जो हमारा ईगो था धीरे धीरे पानी में आ गया, वी वर ऑल इन द सेम वेवलेंथ। और जब वो सेम वेवलेंथ में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिविक कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, करेक्ट? एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? एक रिस्पॉन्स जो हम कर सकते हैं एंड दैट इज एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट करो और उसको फेस करो। जब एक डिजास्टर हो रहा है देयर इज नो पॉइंट इन क्वेश्चनिंग व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट जब आप करते हो तो बहुत इजीली उस सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो। आपने वो बहुत सुंदर कहानी सुनी होगी कि एक बार पापा जो थे ना अपने ऑफिस में थे और अचानक पापा को फोन कॉल आता है और मैसेज बहुत ट्रैजिक था। मैसेज कहाँ से था? उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के स्कूल से मैसेज था और मैसेज ये था कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है एंड शी इज नो मोर। पापा को जो है उसको इतना जोर से सदमा लगता है, वो भागते हैं स्कूल की तरफ मन में प्रार्थना करते हुए कि उन्होंने जो सुना था वो सत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि द न्यूज इज वेरी मच ट्रू एंड हर ब्यूटिफुल क्यूट डॉटर इज नो मोर ऑन दिस अर्थ। यह हादसा पापा को इतना शॉक देता है कि काफी दिनों के बाद भी पापा इस हादसे से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। हमेशा अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को याद करके रोते रहते थे। ना उनको ऑफिस के काम में मन लगता था ना घर के काम में मन लगता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन पापा सोए हुए थे कि पापा एक बहुत सुंदर स्वप्न देखते हैं। कौन सा स्वप्न देखते हैं? फरिश्तों की दुनिया, द लैंड ऑफ एंजल्स। अब पापा देखते हैं छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते आकाश में उड़ रहे हैं, सबके हाथ में कैंडल है और कैंडल के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता छाई हुई है। पापा ये सीन को ऑब्जर्व करते हैं और अचानक दूर खड़े उनको अपनी बेटी दिखाई देते हैं। तो पापा अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि उनकी बेटी के हाथ में भी कैंडल है लेकिन वो कैंडल बुझा हुआ है। तो पापा पूछते हैं, बेटा सबके हाथ का मोमबत्ती तो जल रहा है, आपका मोमबत्ती क्यों बुझा हुआ है? और बेटी बहुत सुंदर जवाब देती है। बेटी कहती है, पापा ये जो मेरे दोस्त है ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पापा, वो हमेशा मेरी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपके आंसू मेरे मोमबत्ती को बुझा देते हैं, इसलिए पापा प्लीज रोना मत, पापा प्लीज डोंट क्राई। कहने का भाव ये है कि जब हम दुखी होते हैं तो सिर्फ हम दुखी नहीं होते, वी क्रिएट अ वाइब्रेशन ऑफ सॉरो। उसी तरह अगर हमने कोई डिजास्टर को एक्सेप्ट किया और उसको हम फेस करना आरंभ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट एम्पावर्स एवरीवन आल्सो, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट। और एक और रिस्पॉन्स जो आप डिवाइन जो आप डिजास्टर के समय पर कर सकते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि कहीं डिजास्टर हुआ तो इमीडिएटली मोबाइल लिए और सभी को पूछने लगे, है ना। एनीवे देयर इज अ डिजास्टर, इमीडिएटली पीपल लाउड टू कम्युनिकेट विद द लाउड वंस। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है विद इन मिनट्स इतनी इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक होती है कम्युनिकेशन की कि कुछ समय के बाद सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो कोई भी मोबाइल की कंपनी क्यों ना हो, लास्ट मिनट में तो वो कुछ काम ही नहीं करता है, तो कैसे कम्युनिकेट करें? इसलिए कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए एंड दैट इज अ डिवाइन कम्युनिकेशन। जब डिजास्टर आता है उसके पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? The technical definition of the meaning of disaster is malevolent movement of a star. और disasters दो प्रकार के होते हैं, एक तो natural disasters होते हैं और दूसरा है human induced disaster. लेकिन friends, आज हम सबसे पहले यह discuss करने की कोशिश करेंगे कि ये disasters होते क्यों हैं. The first strategies of disaster management. The first is called as mitigation. Number 2 is preparation. Third strategy is response, and fourth strategy is recovery. Right?
Actually focuses on the behavior of the people during the disaster.
जब एक disaster होता है तो लोगों का behavior कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, तो कैसा response होना चाहिए.
एक response जो हम कर सकते हैं and that is accept the situation. Accept करो और उसको face करो.
जब एक disaster हो रहा है there is no point in questioning why it is happening to me. Accept. और एक्सेप्ट जब आप करते हो तो बहुत इजीली उस सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो.
कहने का भाव यह है कि जब हम दुखी होते हैं तो सिर्फ हम दुखी नहीं होते, वी क्रिएट अ वाइब्रेशन ऑफ सॉरो.
उसी तरह अगर हमने कोई डिजास्टर को एक्सेप्ट किया और उसको हम फेस करना आरंभ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट एम्पावर्स एवरी वन ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्ट इट एंड फेस इट.
और एक और रिस्पॉन्स जो आप डिवाइन जो आप डिजास्टर के समय पर कर सकते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कम्युनिकेशन.
डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए एंड दैट इज अ डिवाइन कम्युनिकेशन. डिवाइन कम्युनिकेशन. जब मुंबई में फ्लड्स आए तो जब ये देखा गया कि जब दो तीन दिन के बाद जब ट्रैफिक को ईज आउट किया गया तो देखा एक गाड़ी वैसे का वैसे खड़ा है, तो जाकर एनालाइज किया गया तो उसमें चार इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे है ना, चारों के चारों उस गाड़ी के अंदर दे वे फ्रोजन, दे वे डेड. तो पता लगाने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ और एनालिसिस में ये पाया गया कि जब वो बारिश इतनी थी, इतनी ट्रैफिक थी, वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो उन्होंने सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक लॉक कर दिया. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम. और धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, और धीरे धीरे वो जो पानी था वो कार के अंदर आने लगा, और धीरे धीरे वो जो पानी था सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर दिया. अब जस्ट इमेजिन कीजिए लास्ट समय पर जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लॉक को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे दे वेर ऑल फोर वे डेड. इसे कहते हैं अंत समय पर सारे साधन फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें बचना है, सुरक्षित रहना है, तो साधन के साथ साथ साधना की बहुत जरूरी है. एंड दैट इज वॉट वी मीन टू से अ डिवाइन कम्युनिकेशन. डिवाइन कम्युनिकेशन बिकॉज जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है दैट इज ऑन अ मेंटल लेवल. आप किसी को व्यक्ति को याद करते हो और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो हम क्या कहते हैं, आप 100 वर्ष जरूर जियोगे, कहते ना. अब वो कहता था मुझे आपकी मिलने की तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, बस यहां से गुजर रहे थे, अचानक आपकी याद आ गई और हम आपके पास पहुंच गए. दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज डिवाइन कम्युनिकेशन. काफी बार जब आप कोई कार्य करते हो तो अचानक आपको एक इंसाइट मिलता है कि नहीं, आपको ये रास्ते से नहीं जाना, ये रास्ते से जाना है. And that is what is called as divine communication. अर्थात हमारा जितना मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा, उतना the divine communication with the Almighty God would be there. जैसे आप वर्ल्ड कप देखते हो, played in some different part of the country, लेकिन यहां बैठकर आप उसको देख सकते हो. Do you think there is a live wire connected? No. It is in the form of vibrations. वो vibrations को हम यहां पर महसूस कर सकते हैं, तो क्या वो ईश्वर के कम्युनिकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? तो उसके लिए जरूरी राइट ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है. और राइट ट्यूनिंग तभी हो सकती है जब हमारे मन के विचार बहुत शुद्ध और पवित्र हो. एंड दैट इज कुड बी अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स इन टाइम्स ऑफ एनी डिजास्टर. एंड द लास्ट स्टेज इज वॉट इज कॉल्ड एज द रिकवरी. नाउ दिस डील्स विद द आफ्टरमैथ ऑफ अ डिजास्टर. कि जब एक डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद हमें कैसे उस सिचुएशन को डील होना करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज अ रिकवरी स्टेज. हाउ डू वी गो अबाउट इट? बस एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि हैव फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड. उस ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखिए, है ना. और वो ईश्वर ये विश्वास रखिए कि ईश्वर हमको जरूर उस डिजास्टर से, है ना, उपाय बताएगा कि हाउ डू वी डील विथ इट. 1989 में आर्मेनिया में बहुत भूकंप, बड़ा भूकंप आया. विद इन मिनट्स The entire Armenia was in shambles. तो अचानक एक व्यक्ति को अपने बच्चे की याद आई और वो व्यक्ति जो था दौड़कर उस स्कूल में गया, और जब वो वहां पहुंचा तो देखा सारा का सारा उस स्कूल ढेर हो गया है. तो ये व्यक्ति अपने, है ना, बच्चे के क्लासरूम की तरफ गया और एक एक ईंट उठाकर फेंकने लगा. तो बहुत लोगों ने आकर उनसे कहा कि नहीं, अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं है. तो व्यक्ति उनसे पूछता था, अगर हेल्प करना है तो करो, नहीं तो मुझे अपना काम करने दो। 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा नॉन स्टॉप ये पिता ने वो काम किया, फिर भी लोग आकर के अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं, जो हुआ सो हुआ। फिर वो व्यक्ति कहता था, मदद करना है तो करो, नहीं तो मुझे अपना काम करने दो। 15 घंटा 20 घंटा 25 घंटा नॉन स्टॉप काम किए। एट द एंड ऑफ 36th आवर उनको अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, पापा मैं यहाँ पर हूँ। और उनके बेटे के साथ साथ करीब 10 से 15 स्कूल के बच्चे सुरक्षित निकाले गए। दूसरा दिन न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट में यह था कि पापा का अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह था कि पापा ने 36 घंटे नॉनस्टॉप काम करके अपने बच्चे को बचा लिया। लेकिन प्रश्न ये उठा कि बच्चा उसके अंदर क्या कर रहा था। तो बेटे से इंटरव्यू लिया गया, क्या आप 36 घंटे उसके अंदर क्या कर रहे थे? और बेटे का बहुत सुंदर जवाब, जब उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे पापा ज़रूर आकर मुझे बचाएंगे, मेरे पापा ज़रूर आकर मुझे बचाएंगे। अगर लौकिक बेटे का अपने लौकिक बाप पर इतना विश्वास हो सकता है, तो क्या हमारा उस पारलौकिक बाप पर ऐसा विश्वास नहीं हो सकता क्या? एंड दैट इज़ वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकवरी। जब हमें उस ईश्वर पर, उस परम सत्य पर विश्वास होगा, तो धीरे धीरे वो परमात्मा जो है वो हमें शक्ति देगा टू ओवरकम ऑल दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स। प्रश्न उठता है कि अभी हमें करना क्या है, व्हाट इज द एक्शन प्लान, क्या करना चाहिए? मैं आपको दो बातें बताता हूं। एक एक्शन प्लान है स्थूल और दूसरा एक्शन प्लान है सूक्ष्म। ओके, पहला एक्शन प्लान जो बहुत बहुत जरूरी है कि एवरी वन ऑफ अस, हमें ये प्रकृति को सहयोग देना चाहिए। कैसे? एवरी वन शुड प्लांट अ ट्री, प्लांट अ सैपलिंग। हर साल में हर एक व्यक्ति को एक छोटा पेड़ जरूर ये धरती में लगाना चाहिए। दैट इज हाउ वी कैन मैनेज द वेरियस इनकमिंग डिजास्टर्स, नंबर वन। ये तो स्थूल में करना है। सूक्ष्म में क्या करना है? एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वी शुड मेक अ माइंड प्योर। हमें अपने मन को पवित्र रखना है। एंड द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ माइंड प्योर इज वॉट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, और जिसको हम कहते हैं सहज राजयोग। हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर भी कोई से भी नज़दीक सेवा केंद्र में जाकर ये एक हफ्ते का राजयोग शिविर जरूर करना, जहाँ पे यू विल बी टॉट द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। लेकिन क्योंकि आज आप सभी हमारे साथ हैं, तो हम एक बहुत सुंदर ही एक्शन प्लान करेंगे, और वो है हाउ डू आई मेक माई माइंड प्योर। तो मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा, और जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा वैसे वैसे आप करेंगे, ऐसी हमारी विश्वास है। तो क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बैठिए, ऑल ऑफ यू बी रिलैक्स, या गुड। ये 3 स्टेजेस पर हम आपको लेकर जाएंगे। ओके, द फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज में हमें क्या करना है, हम ये प्रकृति के 5 तत्व को देखेंगे, और यहां बैठकर वो 5 तत्व के प्रति बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। सभी करेंगे? यस और नो? यस फ्रेंड्स, तो हम आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले आप इंस्ट्रक्शन सुनना। द फर्स्ट स्टेप इज अपने आप को बहुत रिलैक्स करना, फिर आप प्रकृति के 5 तत्वों को देखना और 5 तत्वों के प्रति बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, हम उस ईश्वर परमात्मा को याद करेंगे, उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेंगे। राइट, empower yourself for any incoming disaster. That is the second stage. तीसरा स्टेज जो बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, हमें अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप आपके इस जीवन रूपी यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइज करिए जिन्होंने कभी ना कभी आपको बहुत ठेस पहुँचाया है, और इन द थर्ड स्टेज उस व्यक्ति को आप पूरी तरह फॉरगिव करेंगे और फॉरगेट करेंगे, माफ कर दीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति के नफरत के फाइल्स जितना हम रखते हैं, उतना वातावरण में नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इस डस्टर का वेट कितना होगा? 200 ग्राम। होल्ड इट, आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट इज द वेट? 200 ग्राम। आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट इज द वेट? स्टिल 200 ग्राम्स। After 10 hours, what is the weight? still 200 grams, but it is giving me terrific pain. So if I'm intelligent, just keep it down.
उसी तरह जो व्यक्ति के साथ जो हमारा इंट्रैक्शन होगा, बेबी बस 200 ग्राम की बात होगी, लेकिन कितने वर्षों से उसको हम अपने मन और बुद्धि में रख कर लेकर जाते हैं. तो आज हमें क्या करना है, उसको डिलीट करना है, डिलीट करते जाना है और अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाना है. राइट, इसे किसी ने क्या खूब कहा है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए. ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए. ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए. ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए. क्यों किसी व्यक्ति के नफरत के फाइल्स लेकर चलते हैं? वी हैव टू जस्ट डिलीट ऑल दोस फाइल्स. ठीक है, सभी हमारे साथ करेंगे? हाँ, तो उसके पहले हम थोड़ा सा अपने आप को तैयार करेंगे. सभी अपने हाथ ऐसे रखिए, कीप योर हैंड्स लाइक दिस. इट्स अ वेरी वंडरफुल फॉर्म ऑफ प्रेयर. आप अपनी भाग्य की रेखाओं को देखिए, हाथों में देखिए. कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. आपका जीवन संकट रहित है, किसी भी प्रकार का संकट नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं है. आपकी जीवन रूपी यात्रा बहुत सुखद और खुशमय है. उस ईश्वर को याद करिए और महसूस करिए कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके हाथों तक पहुंच रही है. सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस बिल्कुल इस तरीके से कीजिए, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस. और सबसे पहले अपने नेत्र में लगाइए, आपके नेत्र प्योर शुद्ध. सारे चेहरे को मसाज कीजिए. नाउ वी आर रेडी फॉर मेडिटेशन. ओके, या ओके फ्रेंड्स, चलिए हम एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ें. अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली. और सबसे पहले प्रकृति के पांचों तत्वों को आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए. धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं. पांचों तत्वों को आप दिल से धन्यवाद दे रहे हैं जो निस्वार्थ वर्षों हमारी सेवा में तत्पर हैं. ये पांचों तत्व हमारे बहुत अच्छे मित्र व दोस्त हैं, हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं. आप विजुअलाइज करिए कि धरती में चारों तरफ हरियाली हरियाली है और प्रकृति हमसे बहुत खुश है. दूसरी स्टेज में आप परमात्मा ईश्वर को याद करिए. उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आपको स्पर्श कर रहे हैं. आप महसूस करिए कि आप आत्मा अजय अमर अविनाशी हो और परमात्मा आपका रक्षक है. आप उनके सानिध्य में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो. आप निश्चिंत हो, निडर हो और अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हो. तीसरी
तीसरी स्टेज में हमें अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाना है, तो उस व्यक्ति को आप चित्रीकरण कीजिए जिन्होंने आपको कभी ना कभी बहुत ठेस पहुंचाया है और आज उनको माफ करना है। ईश्वर से प्राप्त सभी शक्तियां आप उस व्यक्ति के प्रति डिफ्लेक्ट कीजिए, माफ कर दीजिए। फॉरगिव द पर्सन एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, कोई बात नहीं। आपका दिल हल्का होता जा रहा है, आपका मन पवित्र शुद्ध होता जा रहा है। आप ईश्वर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, ओ गॉड, प्लीज गिव ऑल सक्सेस टू माय ग्रेट फ्रेंड। मेरे इस दोस्त को जीवन की हर खुशियां मिले, ऐसा मैं शुभ भावना रखता हूं। ईश्वर आज आपसे इतने खुश हैं क्योंकि आज आपने एक ऐसा कार्य किया जो ईश्वर और प्रकृति चाहती है, और ईश्वर आपको वरदानों से श्रृंगार कर रहे हैं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप सदैव सुरक्षित हैं। ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हुए, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए। और आज हम एक दृढ़ संकल्प करें कि हमें इस धरती माँ के प्रति बहुत बहुत सेवा करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
प्रोफेसर साहब, मेरा एक प्रश्न है कि जब आप मेडिटेशन की प्रक्रिया करा रहे थे तो उस समय आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने आपको जीवन में बहुत कष्ट दिया है, जीवन में जिसने आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसको आप क्षमा कर दीजिए। तो हमने तो उसे क्षमा कर दिया, उस भाव से क्षमा कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति बार बार जो है हम पर अगर आक्रमण करता है या पीछे से वार करता है, तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे?
या दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या होता है कि मेडिटेशन जो है एक बहुत सुंदर टेक्निक है विच एम्पावर्स योर लॉट। आपने तो माफ़ किया लेकिन वो बार बार आपको कहता जा रहा है, बट लेकिन ये एक इतना एम्पावरमेंट आप में मिल जाता है कि नोबडी कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। अक्सर क्या होता है हम लोगों के साथ कि अगर किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया है तो उसको मैं अपने दिल में रखता जाता हूँ और कुछ समय के बाद वो हमको बहुत स्ट्रेस देता है। लेकिन ये मेडिटेशन एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जहाँ पे आप इतने एम्पावर हो जाते हो, वे यू बिकम वेरी असर्टिव, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को बहुत सहज रीति से उसके सामने बता सकते हो कि बाबा दीज आर द रीजंस वेयर यू हैव हर्ट मी, ओके। और ये बात अक्सर करके दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो बार बार आपको कर रहा है तो यहाँ पे एक और शक्ति को आपको यूज करना चाहिए, दैट इज अ पावर टू फेस। आप उसको बहुत क्लियरली सामने रखिए और बहुत विद अ वेरी कूल रिलैक्स्ड काम माइंड बी वेरी असर्टिव एंड कम्युनिकेट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स टू दैट पर्सन कि दीज आर द थिंग्स दैट इज कॉसिंग मी हर्ट, कैन यू टेक सम मेजर्स सो दैट आई एम नॉट हर्ट एट ऑल। ये जो कम्युनिकेशन, जो फ्री एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है बार बार ऐसा भी हो रहा है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सजेशन दूंगा। आप सुबह करीब 4-4:30 बजे उठिए और उस व्यक्ति को इमर्ज कीजिए और उस व्यक्ति को फिर से आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। आप महसूस करेंगे कि उसके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। एक और बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिसको हम एक बहुत सुंदर कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्वमान। तो आप एक अच्छा स्वमान ले सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जब ये स्वमान में चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और जो लोग भी आपको विघ्न देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड स्लोली डिक्रीज। ये तो अनुभव की बात है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक दो बातें आप अपने जीवन में लाइए, तो आप इस बात का खुद एक्सपीरियंस या अनुभव कर सकते हैं।
प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आज संसार में डिजास्टर्स इतने बढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं, इसका आउटकम क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे ये, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट?
सी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि कहा जाता है देर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स, देर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल, देर इज ऑलवेज डे एट द एंड ऑफ द नाइट, हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है। तो अगर हम ये सारे सृष्टि को देखेंगे तो ये चार युग में होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी का समय जो है वो कलयुग है। खुशी की बात है ये कलयुग में डिजास्टर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने आकर हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हर रात के बाद जैसे दिन आता है, उसी तरह ये कलयुग के बाद एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं। इसलिए ये बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण आपको रखना है कि ये जो डिजास्टर्स बढ़ेंगे, लेकिन ये डिजास्टर्स के बाद एक बहुत बहुत सुंदर दुनिया आएगी। तो हम चाहते हैं कि आप भी ये प्रक्रिया को जानें कि कैसे ईश्वर आकर ये कलयुग की दुनिया को परिवर्तन करके सतयुग बना रहे हैं, कैसे एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। तो हम विश्वास करेंगे कि आप इसका जो सारा प्रोसेस है, सारा सिस्टम है, सारा प्लानिंग है, कैसे ईश्वर आकर कर रहे हैं, वो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आकर जानिए, समझिए। लेकिन खुशखबरी ये है कि दुनिया चेंज होगी और यही धरती पर एक बहुत सुंदर स्वर्ग की दुनिया आएगी, जहाँ संपूर्ण सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, पवित्रता होगा। तो आप सभी के लिए ऐसी नई दुनिया में आने के लिए हार्दिक निमंत्रण भी है और स्वागत भी है। ओम शांति।